हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। सुबह के लगभग 12 बज रहे थे। कृषा युग के साथ होटल रूम में थी। युग कब का उठ चुका था, लेकिन कृषा की आंख नहीं खुली थी, इसलिए वो बेड पर उसे अपने बाहों में लेकर सो रहा था। युग कृषा को सोते हुए एकटक देख रहा था। जब कृषा की नींद टूटी और उसने सामने लगी घड़ी में टाइम देखा तो वो हड़बड़ाकर उठने लगी। क्या 12 बज गए हैं और मैं अब तक सो रही थी? कृषा ने उठते ही कहा। वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन युग ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। कृषा ने युग की तरफ देखा और कहा, अगर तुम पहले से ही जाग रहे हो तो मुझे क्यों नहीं उठाया? हमें वापस भी तो जाना है, कितना लेट हो गया होगा? हम अगले 2 दिनों तक राजस्थान में ही हैं, युग ने जवाब दिया। फिर वो कुछ पल रुककर बोला, इट्स जस्ट लाइक आर हनीमून पीरियड। क्या तुम हनीमून भी काम के बहाने निपटाना चाहते हो? कृषा ने युग को घूरते हुए देखा और कहा, मुझे डिनर पर लेकर जाते हो तब तुम्हें अपना काम करना होता है, इसलिए तुम मुझे बाहर लेकर जाते हो। यहाँ भी तुम्हें अपना पहला पड़ाव वाला मिशन पूरा करना था, इसलिए लेकर आए थे, और इसे हनीमून पीरियड का नाम दे रहे हो। कृषा की बातों से उसकी नाराजगी साफ झलक रही थी। उसने युग का हाथ साइड किया और उठने लगी। रात को युग ने ही कृषा के कपड़े चेंज किए थे। कृषा ने खुद इस बात की परमिशन दी थी, लेकिन उठते ही वो इस बात को भूल गई थी। कृषा ने खुद को युग के शर्ट में पाया तो उसने युग की तरफ तिरछी निगाहों से देखा और कहा, तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे कपड़े चेंज मत किया करो? रियली? फर्स्ट एट ऑल, मुझे किसी भी चीज के लिए तुम्हारी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टिल आई वॉन्ट टू टेल यू कि तुमने ही मुझे कपड़े चेंज करने के लिए कहा था। सेकेंड थिंग, आज से पहले भी मैं ये काम बहुत बार कर चुका हूँ, तुम्हें हर तरीके से देख चुका हूँ, महसूस कर चुका हूँ, तो मेरे सामने से अपनी शर्म का पर्दा जितनी जल्दी हटा दोगी तुम्हारे लिए बेहतर होगा। युग ने सिर हिलाकर जवाब दिया और फिर वो भी उठ गया। कृषा वहाँ खड़ी युग का चेहरा देख रही थी जबकि युग वॉशरूम में चला गया। अंदर जाने के बाद उसने तेज आवाज में कहा, शाम को 7 बजे हम एक यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं, वहाँ करियर काउंसलिंग सेमिनार है और मुझे वहाँ लेक्चर देना है। रियली? अब माफिया लोग भी कॉलेज में लेक्चर देने के लिए जाने लगे? वहाँ जाकर लोगों को क्या काउंसिल करोगे? उन्हें डॉक्टर इंजीनियर नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड ज्वाइन करना चाहिए। अच्छा इंसान बनने में कुछ नहीं रखा हुआ है। एनी टाइम गुस्से में रहो, जिस इंसान का जितना यूज कर सकते हो करो, और अगर वो किसी का काम का नहीं है या आपकी बात नहीं मानता तो उसे जान से मार दो। कृषा युग से नाराज थी, इसलिए वो कुछ भी कहे जा रही थी। कृषा बोले जा रही थी तभी अचानक उसे अपने कमर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। युग वॉशरूम से बाहर आ गया था और उसने कृषा को पीछे से कसकर पकड़ रखा था। युग को अचानक अपने पीछे देखकर कृषा घबरा गई। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, वो मैं बस पूछ रही थी कि तुम कौन से कॉलेज में जाने वाले हो, क्या मुझे भी वहाँ साथ जाना है? लेकिन मैंने तो कुछ और ही सुना, युग ने सर्द आवाज में कहा। कृषा पर उसकी पकड़ टाइट होती जा रही थी। इससे वो समझ गई कि युग उसकी बातों से गुस्सा हो चुका है। कृषा ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और धीरे से कहा, ओके फाइन, हाँ मैंने कहा था तो, और क्या बोलूँ, सच यही है कि तुम एक माफिया हो। आई अग्री, पर तुम भी अपनी सच्चाई से भाग नहीं सकती। पहले तुम सिर्फ माफिया प्रिंसेस थी, लेकिन अब एक क्रूअल हार्टेड माफिया की वाइफ हो। लोगों की नज़रों में मैं एक बहुत इज्जतदार इंसान हूँ जो राणा इंडस्ट्रीज का मालिक है, एक काबिल इंसान है जिसने राणा इंडस्ट्रीज की बहुत सारी फ्रेंचाइजीज को मैनेज कर रखा है, युग ने सामान्य अंदाज में जवाब दिया। अब उसने कृषा को काफी सॉफ्टली हग कर रखा था। कृषा ने पलटकर युग की तरफ देखा और अपने दोनों हाथ युग के गले में डाल दिए। युग के हाथ कृषा की कमर पर थे। कृषा ने युग की बात के जवाब में कहा, ओह रियली, तुमने राणा इंडस्ट्रीज को हैंडल कर रखा है, तुम तो ठीक से जाते तक नहीं और कहाँ क्या काम हो रहा है तुम्हें पता भी नहीं है। किसने कहा मुझे पता नहीं है? अभी तुम ठीक तरह से मुझे जानी ही कहाँ हो। चलो अब बातें बहुत हो गई, एक बात क्लियरली सुन लो, कभी कुछ ऐसा मत करना या कहना जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आए, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अपनी बात कहकर युग ने कृषा के कान पर हल्के से किस करने लगा। कृषा ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेने लगी। वो धीरे से बोली, प्लीज डोंट, ओके, कहकर युग ने कृषा को छोड़ दिया। रेडी होने के बाद कृषा और युग लंच के लिए बाहर गए। उसके बाद युग को यूनिवर्सिटी जाना था। वो उस हिसाब से तैयार हो चुका था। उसने नेवी ब्लू कलर का कस्टम सूट पहना था। कृषा भी उसके साथ जाने वाली थी। युग ने पहले ही सब कुछ प्लान कर रखा था, इसलिए उसने सेमिनार अटेंड करने के लिए कृषा के लिए साड़ी सिलेक्ट की थी। इस तरह की जगह पर अक्सर साड़ी काफी एलिगेंट लुक देती थी। योग कृषा को साड़ी पहना रहा था, जबकि वो उसके हाथ लगाने पर बार बार हिल रही थी। उसके ऐसा करने पर युग को टाइम लग रहा था, ऊपर से उसे जाने में देर भी हो रही थी। युग ने सर्द निगाहों से कृषा की आंखों में देखा और कहा, तुम ठीक से खड़ी नहीं हो सकती, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, और तुम जो कर रहे हो उससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तुम जानबूझकर मुझे ऐसी जगह पर टच कर रहे हो जहाँ, बोलते हुए कृषा रुक गई। वो युग की तरफ घूर कर देखने लगी। मैं तुम्हें सब जगह टच करूंगा, वो भी अपने हिसाब से। अगर तुम्हारा खुद पर जरा सा भी कंट्रोल नहीं है तो हम सेमिनार में जाना रहने देते हैं, चलो बेड पर चलते हैं, बोलते हुए युग कृषा को उठाने लगा। तभी वो उसका हाथ पकड़कर बोली, नहीं मैं ठीक हूँ। उसके बाद कृषा अटेंशन पोजीशन में खड़ी हो गई। युग ने कृषा को साड़ी पहना दी थी। उसने कृषा के लिए एमरल्ड ग्रीन कलर की साड़ी सेलेक्ट की थी। साड़ी के साथ कृषा ने सिंपल डायमंड ज्वेलरी पहनी थी और बालों को स्ट्रेट कर रखा था। इस वक्त वो किसी कॉलेज प्रोफेसर की तरह लग रही थी। खुद को आईने में देखने के बाद कृषा ने कहा, ऐसे तैयार होकर गई तो वो मुझे जॉब दे देंगे। जॉब फर्स्ट लुक देखकर नहीं दी जाती, तुम्हारा आईक्यू देखने के बाद फॉर श्योर वो तुम्हें कोई जॉब नहीं देंगे, युग ने भौहें उठाकर कहा। कृषा को जब उसकी बात का मतलब समझ में आया तो वो उसे घूर कर देखने लगी। कृषा और युग जयपुर यूनिवर्सिटी में करियर काउंसलिंग सेमिनार अटेंड करने के लिए निकल चुके थे। वहाँ उनका बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया गया। वहाँ और भी पर्सनालिटीज काउंसलिंग के लिए अपना लेक्चर देने वाली थीं, लेकिन आज का दिन खास था क्योंकि युग राणा वहाँ पर आया था। भले ही युग बिजनेस न करता हो, लेकिन उसे काफी सारे अवार्ड मिले थे। इतनी कम उम्र में इस तरह की सक्सेस हासिल करना हर किसी का सपना होता है। जब युग की बारी आई तो युग अपनी जगह पर खड़ा हुआ और माइक सही करते हुए बोला, वेलकम स्टूडेंट, अभी तो आपकी न्यू लाइफ शुरू हुई है। ऑफ कोर्स आप सब यही सपना देख रहे होंगे कि जल्द से जल्द सक्सेस कैसे हासिल की जाती है। यकीन मानिए, जो चीज जितनी मुश्किल से मिलती है उसकी वैल्यू उतनी ही होती है। कहते हैं मंजिल से ज्यादा खूबसूरत रास्ते होते हैं, क्योंकि वो रास्ते हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। कुछ ऐसे सबक होते हैं जो आपको फेलियर एक्सपीरियंस करने के बाद ही मिल सकते हैं। तो फेलियर से घबराओ मत, खुद को डबल स्ट्रांग करके एफर्ट्स कीजिए, आप जरूर सक्सेस होंगे। युग जब स्पीच दे रहा था तब स्टूडेंट्स उसे काफी गौर से सुन रहे थे, खासकर लड़कियाँ। वो दिखने में काफी हैंडसम था और उसकी आवाज में जो जुनून था उसे सुनकर सबको सुकून महसूस हो रहा था। वहीं कृषा युग की स्पीच सुनते वक्त उबासी ले रही थी।
कृषा ने युग की तरफ देखकर अपने मन में कहा, कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है, इसे ये स्पीच नहीं देनी चाहिए। इसे तो ये स्पीच देनी चाहिए कि अगर आपको कोई चीज आसानी से हासिल ना हो तो आप उसे दूसरों से छीन कर भी ले सकते हो। अगर सामने वाला फिर भी आपको वो चीज नहीं दे रहा तो उसको उसी वक्त जान से मार दो। फेलियर से घबराना नहीं है, आप स्ट्रांग हो तो आपका फेल होने का चांस ही नहीं है। युग जो भी बोल रहा था कृषा अपने मन में उल्टा सोच रही थी। वही भीड़ में मौजूद दो लड़कियां युग और कृषा दोनों को ही देख रही थीं। उनमें से एक लड़की ने कहा, यार ही सो हैंडसम, उसकी वाइफ को तो देखो, बिल्कुल उसके साथ मैच नहीं हो रही। आई मीन, दिखने में क्यूट है, ब्यूटीफुल भी है, बट शी इज नॉट हॉट जस्ट लाइक युग राणा। हाँ, मैं भी कब से यही सोच रही थी। योग राणा को देखकर डेविल वाली वाइब आती है और इसकी वाइफ को देखकर ऐसा लगता है कि कोई एंजल हो। डेविल के साथ तो डेविल ही अच्छा लगता है। योग राणा इस लड़की के लिए नहीं, मुझ जैसी किसी लड़की के लिए बना हुआ है। बोलते हुए वो लड़की अजीब नजरों से युग को घूर रही थी। वो कोई आम लड़की नहीं थी, राजस्थान के सबसे बड़े बिजनेसमैन जो कि लैंड माफिया के नाम से भी फेमस थे, वो मिस्टर तेज सिंह राणावत की बेटी पिया राणावत थी। पिया ने युग की तरफ अजीब नजरों से देखा और फिर किसी को मैसेज किया। उसके बाद वो वापस युग को देखने लगी। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट थी। युग के स्पीच होने के बाद वो यूनिवर्सिटी स्टाफ और बाकी गेस्ट्स के साथ डिनर ले रहे थे। वहाँ सभी युग से एडवाइस ले रहे थे। कृषा ये देखकर हैरान थी कि युग इतना बड़ा माफिया होने के बावजूद अंडरवर्ल्ड के अलावा नॉर्मल दुनिया में भी उसकी काफी इज्जत थी। डिनर खत्म हो जाने के बाद युग और कृषा दोनों वापस होटल के लिए रवाना हो गए। वो दोनों वहां से निकले तब तक रात के लगभग 11 बज गए थे। इन सत के बीच पिया राणावत की युग पर पूरी नजर थी। उसके डैड मिस्टर तेज सिंह राणावत भी उस सेमिनार में शामिल थे। उस वजह से पिया को देर तक रुकने का मौका मिल गया था। युग और कृषा जिस होटल में ठहरे थे वो जयपुर के आउट एरिया में बना हुआ था। होटल काफी बड़ा होने की वजह से फार्म हाउस के हिसाब से बनाया गया था। वो योग शहर का ट्रैफिक पार करके सुनसान रास्ते से गुजरते हुए होटल की तरफ बढ़ रहे थे। युग गाड़ी ड्राइव कर रहा था जबकि कृषा उसके पास वाली सीट पर बैठी थी। कृषा ने बोरियत भरे लहजे में कहा, आज का सेमिनार कितना बोरिंग था। मुझे इस तरह की चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जब मैं स्टूडेंट थी मैंने तब भी कोई सेमिनार अटेंड नहीं किया। तुमने कभी कोई काम इंटरेस्ट के साथ किया भी है? युग ने पूछा। इतने दिनों में उसे कृषा की किसी भी हॉबी के बारे में पता नहीं चला। वो हर काम ऐसे करती थी जैसे उसे मजबूरी में करना पड़ रहा हो। फिर युग ने वापस पूछा, अच्छा बताओ तुम्हारा किस चीज में इंटरेस्ट है? कृषा को उसकी बात का जवाब देने का मौका नहीं मिला। अचानक युग ने गाड़ी के ब्रेक लगाए क्योंकि उसके सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर खड़ी हो गई थी। युग ने जब साइड मिरर से पीछे की तरफ देखा तो उसके पीछे और अगल बगल में भी काफी सारी गाड़ियां खड़ी थी। जिस प्रोफेशन में वो था उससे उसे ये समझते देर नहीं लगी कि वो गाड़ियां यहाँ क्यों आई होगी।